ब्रह्मा जी हैं, तो ब्रह्मा जी को फल प्राप्त हुआ। ब्रह्मा जी ने यह फल नारद जी को दिया। जब नारद जी ने ब्रह्मा जी से जिज्ञासा की, हे पिता, आप ही इस सृष्टि में सबसे बड़े हैं, आपने ही इस सृष्टि में धर्म और अधर्म के नियम बनाए हैं, परंतु आप अपने अतिरिक्त किसी अन्य का ध्यान कर रहे हैं, इससे लगता है कि शायद आपसे भी बढ़कर कोई अन्य है। उस समय ब्रह्मा जी ने नारद जी को श्रीमद् भागवत प्रदान की, परंतु उन चार श्लोकों में नहीं जो उन्हें भगवान से प्राप्त हुए थे, बल्कि ब्रह्मा जी ने नारद जी को भगवान के विभिन्न अवतारों का संक्षिप्त वर्णन किया और कहा, तुम एतद् विपुलम कुरु, अर्थात तुम इस भागवत का विस्तार करो। इसके बाद नारद जी ने यह भागवत व्यास जी को प्रदान किया। व्यास जी को नारद जी ने केवल संकेत दिया, कुछ बताया नहीं। व्यास को कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वे तो सर्वज्ञ हैं। व्यास जी ने कलयुग के मनुष्यों की स्मरण शक्ति कमजोर देखकर वेदों के चार विभाग कर दिए। उसके बाद देखा कि स्त्रियां, शूद्र तथा द्विजबंधुओं को वेद समझने की योग्यता नहीं है, इसलिए उन्होंने महाभारत की रचना कर दी। फिर भी वे असंतुष्ट थे और विचार कर रहे थे कि शायद मेरा कार्य पूरा नहीं हुआ है। उस समय नारद जी ने उन्हें यह संकेत दिया, आपने अपने साहित्य में जितना अधिक धर्म, अर्थ तथा काम का वर्णन किया है, उतना भगवान की लीलाओं का वर्णन नहीं किया है। आप एक ऐसे ग्रंथ की रचना कीजिए जिसमें भगवान की शुद्ध भक्ति के अतिरिक्त अन्य कोई विषय ना हो। इस प्रकार वेद रूपी कल्प वृक्ष का यह फल वेद व्यास तक आया। अब वेद व्यास जी ने यह फल सुखदेव गोस्वामी को दिया। यहां पर कहा गया है कि जिस प्रकार किसी वृक्ष के पके हुए मीठे फल में तोता अपने चोंच मार देता है, तो वह फल और अधिक मीठा हो जाता है, उसी प्रकार सुखदेव जी के मुख से निकला हुआ श्रीमद् भागवत और भी अधिक मधुर हो गया। प्रश्न उठता है कि श्रील प्रभुपाद ने जो भगवान से प्रारंभ होने वाली गुरु परंपरा दी है, उसमें सुखदेव जी का नाम क्यों नहीं है? व्यास जी के बाद सुखदेव जी का नाम होना चाहिए था, लेकिन व्यास जी के बाद किसका नाम आता है? मध्वाचार्य। व्यास जी के बाद सीधे मध्वाचार्य का नाम आता है, तो सुखदेव जी का नाम क्यों नहीं आया? व्यास जी के बाद सुखदेव जी का नाम होना चाहिए था। इसका उत्तर यह है कि व्यास जी ने श्रीमद् भागवत सुखदेव गोस्वामी को प्रदान किया, परंतु फिर श्री सुखदेव गोस्वामी के मुख से निकले हुए भागवत को पुनः ग्रहण कर लिया। इसके बाद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत मध्वाचार्य जी को प्रदान किया और इस प्रकार से अनेक गुरुओं की परंपरा में यह श्रीमद् भागवत श्रील प्रभुपाद को प्राप्त हुआ। इस प्रकार से यह श्रीमद् भागवत रूपी फल हमें श्रील प्रभुपाद से प्राप्त होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जिस प्रकार किसी वृक्ष की सबसे अधिक ऊंचाई से पका हुआ फल अनेक व्यक्तियों के द्वारा क्रमशः नीचे की ओर सुरक्षित रूप से आता है, उसी प्रकार भगवान के द्वारा दिया हुआ यह श्रीमद् भागवत रूपी फल हमें श्रील प्रभुपाद के द्वारा प्राप्त हुआ है। चतुश्लोकी भागवत, चार श्लोकों की भागवत जो साक्षात भगवान गर्भोदक साई विष्णु के मुख से निकली है, उसको समझने की शक्ति केवल उन तीन ईश्वरों में है जो उनके अधीनस्थ कार्य करता है। गर्भोदक साई विष्णु इस ब्रह्मांड में तीन ईश्वरों को नियुक्त करते हैं, पहला पालनकर्ता क्षीरोदक साई विष्णु और दूसरे सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी और तीसरे संहारकर्ता शिव जी। सृष्टि के प्रारंभ में इन तीनों देवों ने चतुश्लोकी भागवत गर्भोदक साई विष्णु से प्राप्त की। किस प्रकार? क्षीरोदक साई विष्णु ने अपनी समस्या प्रकट की, प्रभो आपके आदेश से मैं संपूर्ण सृष्टि का पालन करूंगा, साधुओं की रक्षा, धर्म की स्थापना तथा दुष्टों का विनाश करने के लिए समय समय पर अवतार लेता रहूंगा। जो मेरे भक्त मेरी शरण लेंगे उन्हें मैं चार प्रकार की अथवा पांच प्रकार की मुक्तियां भी प्रदान करूंगा, परंतु मैं उन लोगों का पालन कैसे करूंगा जो पांचों प्रकार की मुक्तियां नहीं चाहते? ये समस्या किसकी है? विष्णु जी की है। परंतु मैं उन लोगों का पालन कैसे करूंगा जो पांचों प्रकार की मुक्तियां नहीं चाहते, तथा मैं अपना तथा लक्ष्मी जी का भी कैसे पालन करूंगा? उस समय भगवान नारायण ने विष्णु जी को चतुश्लोकी भागवत प्रदान की। फिर दूसरा, सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी ने अपनी समस्या प्रकट की, प्रभो आपके आदेश से मैं सृष्टि उत्पन्न करूंगा, प्रजापतियों को धर्म के नियम बतलाऊंगा, इस प्रकार से संपूर्ण प्रजा मुझे ही अपना ईश्वर समझेगी, मेरा अत्यंत सम्मान तथा प्रतिष्ठा होगी, ऐसी स्थिति में रजोगुण के कारण मेरे अंदर अभिमान उत्पन्न हो जाएगा, इस रजोगुण से मुक्त होने का कृपया उपाय बताइए। ब्रह्मा जी की समस्या समझ रहे हैं, रजोगुण है और सम्मान मिलता है तो अभिमान पैदा होता है, तो ब्रह्मा जी की समस्या है, सम्मान तो मिलेगा ही। उस समय भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को चतुश्लोकी भागवत प्रदान की। तीसरे, संहारकर्ता शिव जी ने अपनी समस्या प्रकट की, प्रभो आपके आदेश से मैं तीन प्रकार की प्रलय करूंगा, परंतु चौथी प्रकार की प्रलय करने की मेरे अंदर सामर्थ्य नहीं है, कृपया मुझे ये सामर्थ्य प्रदान करें। तीन प्रकार की प्रलय क्या है? पहला नित्य प्रलय, दूसरा नैमित्तिक प्रलय और तीसरा प्राकृत प्रलय। नित्य प्रलय क्या है? नित्य प्रलय का अर्थ है कि प्रत्येक क्षण प्रत्येक वस्तु में परिवर्तन हो रहा है, जिस प्रकार नदी का जल प्रत्येक क्षण बदल रहा है अथवा दीपक की ज्योति प्रत्येक क्षण बदल रही है, उसी प्रकार हमारे शरीर में सदा परिवर्तन होता रहता है, ये नित्य प्रलय है। दूसरा नैमित्तिक प्रलय वह है जो ब्रह्मा जी के प्रत्येक दिवस के अंत में होती है, इस प्रलय में पृथ्वी अंतरिक्ष तथा स्वर्ग ये तीन लोक जल में डूब जाते हैं, यह प्रलय ब्रह्मा जी की रात्रि तक होती है, ब्रह्मा जी का सवेरा होते ही पानी चला जाता है तथा तीनों लोगों की सृष्टि पुनः होती है। ये कौन सी प्रलय है? नैमित्तिक। तीसरी प्राकृत प्रलय वह है जो ब्रह्मा जी की आयु के समाप्त होने पर होती है, इस प्रलय में सृष्टि के तत्व पृथ्वी जल अग्नि वायु तथा आकाश इनका भी प्रलय हो जाता है, पृथ्वी जल स्वरूप हो जाती है, जल अग्नि स्वरूप हो जाता है, अग्नि वायु स्वरूप हो जाता है, वायु आकाश स्वरूप हो जाता है, इस प्रकार संपूर्ण ब्रह्मांड खाली हो जाता है तथा महाविष्णु के शरीर में सभी ब्रह्मांडों के साथ प्रवेश कर जाता है तथा इतनी ब्रह्मा जी की संपूर्ण आयु महाविष्णु की एक निश्वास के बराबर होती है। शिव जी ने कहा कि इन तीन प्रकार की प्रलय करने की तो उनमें सामर्थ्य है, परंतु चौथी प्रलय, चौथी प्रकार की प्रलय करने की उनमें सामर्थ्य नहीं है। वह चौथी प्रलय क्या है? आत्यंतिक प्रलय। इस प्रलय की विशेषता यह है कि उक्त तीनों प्रकार की प्रलयों से किसी भी जीव का विनाश नहीं होता, यद्यपि तीन प्रकार की प्रलयों से जीव मृत्यु की स्थिति का अनुभव करते हैं, परंतु कुछ समय बाद वे पुनः जन्म लेते हैं। कुछ जीव ऐसे भी हैं जो भगवान की सेवा भी नहीं करना चाहते और संसार के दुख भी नहीं भोगना चाहते हैं, समझ रहे हैं? कुछ ऐसे भी जीव हैं जो भगवान की सेवा भी नहीं करना चाहते हैं और संसार के दुख भी नहीं भोगना चाहते हैं। ऐसे जीव यदि शिव जी की शरण में आकर अपना आत्यंतिक विनाश चाहते हैं तो शिव जी ने यहां कहा है कि वे ऐसी सामर्थ्य पाना चाहते हैं। इस प्रकार से आत्यंतिक प्रलय का अर्थ हुआ जीव का ब्रह्म ज्योति में मिल जाना। इस स्थिति में चार प्रकार की प्रलयों में से एक प्रलय, इस स्थिति को चार प्रकार की प्रलयों में से एक प्रलय अर्थात आत्यंतिक प्रलय कहा जाता है तथा इसी स्थिति को पांच प्रकार की मुक्तियों में से एक मुक्ति अर्थात सायुज्य मुक्ति भी कहा जाता है। इस प्रकार की मुक्ति को वैष्णवगण नरक के समान मानते हैं तथा श्रील प्रभुपाद ने इसे आध्यात्मिक आत्महत्या का नाम दिया है। उस समय भगवान नारायण ने शिव जी को चतुश्लोकी भागवत प्रदान की। तो आप समझ रहे हैं, ब्रह्मा विष्णु शिव तीनों को जो है ना चार श्लोकों में भागवत प्रदान किया। प्रकृति के तीन गुणों में श्रीमद् भागवत, तीनों देवों ने भगवान नारायण से श्रीमद् भागवत प्राप्त कर अपना अभीष्ट प्राप्त किया। ब्रह्मा जी रजोगुण में श्रीमद् भागवत को 7 दिनों में पूर्ण करते हैं, शिव जी तमोगुण में श्रीमद् भागवत को 1 वर्ष में पूर्ण करते हैं तथा विष्णु जी सप्तगुण में श्रीमद् भागवत को 1 मास में पूर्ण करते हैं। इसके अतिरिक्त जब लक्ष्मी जी श्रीमद् भागवत विष्णु जी को सुनाती हैं तो यह 2 मास में पूर्ण होती है। लक्ष्मी जी श्रीमद् भागवत का अच्छी प्रकार से रसास्वादन करती हुई जब विष्णु जी को सुनाती हैं तो यह निर्गुण विधि कहलाती है। सत्वगुण में श्रीमद् भागवत के प्रत्येक अक्षर का स्पष्ट उच्चारण करते हुए तथा प्रत्येक शब्द का अर्थ अच्छी प्रकार समझाते हुए कथा को एक मास में पूर्ण किया जाता है। रजोगुण में श्रीमद् भागवत को शीघ्रता से 7 दिन में समाप्त किया जाता है तथा तमोगुण में श्रीमद् भागवत बीच में बंद हो जाती है, फिर कुछ दिनों के बाद याद आने पर फिर आगे से सुनाई जाती है। इस प्रकार से 1 वर्ष में कथा समाप्त होती है। अब प्रश्न ये उठता है, क्या परीक्षित तथा सुखदेव गोस्वामी के बीच में जो श्रीमद् भागवती कथा 7 दिनों तक हुई थी वह रजोगुण में थी क्या? कोई प्रश्न करे कि क्या वो 7 दिन में जो कथा हुई वो क्या रजोगुण में थी? उत्तर यह है, जो परीक्षित महाराज तथा श्री सुखदेव गोस्वामी के बीच में श्रीमद् भागवत की चर्चा हुई थी उसमें 7 दिनों का कोई नियम नहीं था, बल्कि 7 दिन तो परीक्षित महाराज की आयु शेष थी, अतः वह श्रीमद् भागवत की कथा निर्गुण थी। किसी का कोई प्रश्न है? थोड़ा समय बचा है, या मैं प्रश्न करूं? आपका प्रश्न। चतुश्लोकी के भागवत का अर्थ, अभी कुछ दिन पहले चैतन्य चरितामृत में चतुश्लोकी भागवत के एक एक श्लोक का जो है प्रवचन हुआ था और प्रभुपाद जी ने काफी विस्तार से 4 श्लोकों के तात्पर्य लिखे हैं। चैतन्य चरितामृत में भी तात्पर्य मिलते हैं इन 4 श्लोकों के काफी विस्तार से, और श्रीमद् भागवत में भी अलग से तात्पर्य दिए हैं, तो आप उनको देख सकते हैं। लेकिन संक्षेप में मैं बता देता हूं, भगवान बताते हैं, अहम एवा समय वाग्रे नान्यद्यत सदसत परम पश्चात अहम यदि तच्चा योग शिष्यति स्वस्मि अहम्। पहले श्लोक में भगवान ये बताते हैं कि पहले भी मैं ही था, जिस समय सत असत कुछ भी नहीं था ये जगत, और बाद ही मैं ही रहता हूं, भगवान ये बताते हैं। और फिर आगे चल करके फिर माया का बताते हैं, माया का स्वरूप क्या है, यथा भासो यथा तमा, किस भौतिक जगत में जो है माया किस प्रकार से है, तो इस भौतिक जगत में क्या है कि कभी तो सूर्य के द्वारा अंधकार पैदा होता है, सूर्य के द्वारा ही अंधकार पैदा होता है, उन स्थानों में जहां सूर्य की रोशनी नहीं आती है अंधकार पैदा होता है, और कहीं पर सूर्य का परावर्तन दिखाई पड़ता है ना, आभास, सूर्य का आभास दिखाई पड़ता है, लेकिन सूर्य में ये दोनों चीजें नहीं है, ना तो अंधकार है और ना ही सूर्य का परावर्तन है, सूर्य में तो हमेशा प्रकाश रहता है। तो इसी प्रकार से भौतिक जगत में जो है ना, जो सुख और दुख जो दिखाई पड़ते हैं ये माया है, ये भगवान बताते हैं। इस तरह से भगवान संक्षेप में 4 श्लोकों में श्रीमद् भागवत बताते हैं, लेकिन ये बताया गया है कि इन 4 श्लोकों को समझने की शक्ति किसी में नहीं है 3 व्यक्तियों के अलावा। वो 3 व्यक्ति कौन है? ब्रह्मा, विष्णु और शिव, ये 3 व्यक्ति ही हैं जो 4 श्लोकों को समझ सकते हैं, है ना। और व्यास जी ने इन 4 श्लोकों का विस्तार किया है कितने श्लोकों में? 18,000 श्लोकों में सुखदेव परीक्षित संवाद के रूप में। और कोई प्रश्न किसी का? आपका हाँ, हमने बताया कि ब्यास जी ने सुखदेव गोस्वामी को सुनाया और फिर सुखदेव गोस्वामी से ब्यास जी ने सुना भागवत, क्योंकि जब सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को सुना रहे थे तो वहां पर ब्यास आदि जितने मुनि थे वो सब थे वहां उपस्थित थे, और इसलिए ये और ज्यादा स्वादिष्ट हो गया है, ये फल और ज्यादा मीठा हो गया है। सुख मुखाद मृत द्रव संयुतम, सुखदेव रूपी तोते के मुख के अमृत रस से संयुक्त होकर के भागवत और ज्यादा मधुर हो गया है, है ना। और अभी हमें भागवत जो प्राप्त होता है वो प्रभुपाद जी के तात्पर्यों के साथ में है, प्रभुपाद जी के मुख से निकला हुआ और ज्यादा मधुर हो गया है श्रीमद् भागवत, जो प्रभुपाद जी के तात्पर्य है। आपका प्रश्न है, भागवत का अर्थ क्या होता है? कौन बताएगा भागवत का अर्थ? हाँ, भगवान का। हाँ हाँ प्रभु, दो भागवत हैं, एक भागवत पुस्तक और दूसरे भागवत पुरुष है ना, एक भागवत है भक्ति रस शास्त्र, एक भागवत है भक्ति रस पात्र, जो भक्ति रस प्राप्त करता है भावों का, तो वो पीते हैं इस रस को, भक्ति रस को पीते हैं, भागवत के भक्ति रस को पीते हैं, वे भागवत कहलाते हैं जो श्रवण करते हैं श्रोता है? ये भागवत कहलाते हैं, ये श्रवण कराते हैं सुनाते हैं, वे भी भागवत कहलाते हैं। तो भागवत पुरुष और दूसरे भागवत ग्रंथ, दूसरा पुस्तक भागवत और पुरुष भागवत। तो ये कहा गया कि हमें भागवत पुस्तक सुनना चाहिए भागवत पुरुष से, और जो भागवत नहीं है यानी अवैष्णव मुखोद्गीर्णम, जो वैष्णव नहीं है उसके उसके मुख से निकला हुआ जो हरि कथा अमृत है वो दूषित हो जाता है ना, ये सर्प के मुख से जूठा हुआ दूध विषैला हो जाता है ना। तो हमें भागवत से ही हमें भागवत श्रवण करना चाहिए। और कोई प्रश्न किसी का? तो इनका प्रश्न है कि हमने बताया कि भागवत सबसे पहले व्यास जी ने नारद जी को बताया, नहीं नारद जी ने व्यास जी को बताया। ये परंपरा जो हमारी परंपरा है वो कैसी है? भगवान से ब्रह्मा जी को प्राप्त हुआ, ब्रह्मा जी से नारद जी को, और नारद जी से व्यास जी को प्राप्त हुआ, और व्यास जी से सुखदेव गोस्वामी को, फिर मध्वाचार्य को प्राप्त हुआ। इस प्रकार की परंपरा है जिसको कि हम कहते हैं ब्रह्म नारदीय संप्रदाय, ब्रह्म नारदीय मध्वो गौड़िया संप्रदाय, ये ऐसा संप्रदाय है। ये कुमार संप्रदाय भी है, तो कुमार संप्रदाय में कुछ इसी प्रकार की परंपरा है। और नारद जी ने यद्यपि व्यास जी को आदेश दिया था भागवत की रचना करने का, लेकिन नारद जी खुद भी एक बार ऐसे भ्रमित हो गए और वे समझ नहीं पा रहे हैं कि भक्ति देवी का कष्ट कैसे दूर होगा। तो उस समय चार कुमारों ने फिर यही कहा कि आप इस बात को भूल गए, जब व्यास जी अज्ञान के सागर में डूब रहे थे तो आपने उनको बचाया और आपने जो आदेश दिया वही श्रीमद् भागवत है जो कि भक्ति का कष्ट दूर करेगी। तो फिर भक्ति देवी का कष्ट दूर करने के लिए और ज्ञान वैराग्य को जीवित करने के लिए चार कुमारों ने हरिद्वार में फिर भागवत कथा सुनाई 7 दिन के लिए, और नारद जी और जितने ऋषि थे वो समाय श्रवण करने के लिए है ना। तो वो भी एक परंपरा है और वो कुमार संप्रदाय चलाता है, वो हमारी परंपरा इस प्रकार की है जो कि ब्रह्म संप्रदाय कहलाता है। और कोई प्रश्न किसी का? मैं प्रश्न करूं, भागवत जो है 3 गुणों में श्रवण की जाती है, सत्व गुण में, रजोगुण में और तमोगुण में। तो सत्व गुण में जब कथा होती है भागवत की तो कैसे होती है, कौन बताएगा? एक मास में, खैर वो तो एक मास वो विष्णु जी का है नियम, लेकिन वैसे उसका जो मुख्य जो लक्षण है सत्व गुण में वो क्या होता है भागवत को? हाँ, ठीक से एक एक शब्द का अर्थ समझाया जाए, स्पष्ट किया जाए तो सत्व गुण में होता है ना। और रजोगुण में जब कथा होती है भागवत की तो उसका मुख्य लक्षण क्या है? जल्दी जल्दी पूरी की जाती है, जल्दी जल्दी पूरी की जाती है कि नहीं? ये 7 दिन में जैसे लोग करते हैं तो जल्दी से निकाल देते हैं, कई अध्याय एक साथ निकाल देते हैं जल्दी बता करके और आ जाते हैं, हैं? तो बहुत जल्दी में करते हैं और शोभा सजावट के साथ करते हैं और संगीत के साथ करते हैं, तो वो जो ना रजोगुण में है। जो व्यवसाय कथाकार हैं उनको हम नहीं कह सकते हैं ऐसे, क्योंकि वो तो बदल लेते हैं उसका जो अर्थ, अगर वही बदल देते हैं तो फिर वो तो जो ना और ज्यादा वो है, वो भागवत है ही नहीं, उसको भागवत नहीं कह सकते हैं। जो व्यवसायिक कथावाचक हैं वो अगर कुछ बोलते हैं अपनी बात उसमें जोड़ते हैं तो वो तो भागवत है ही नहीं। और तमोगुण में भागवत कथा होती है वो कैसी है? हाँ, भूल गए, कुछ दिनों में बंद हो गई, फिर भूल गए, फिर याद आया तो फिर आ गए, बैठ गए, है ना। तो तमोगुण में भागवत होती है। और निर्गुण भागवत क्या है? भक्ति का रसास्वादन करते हुए जो सुनाई जाए तो वो जो निर्गुण भागवत है ना। लेकिन तीनों प्रकार से, चारों प्रकार से भागवत कल्याणकारी है ना। और शिव जी को जो है क्या समस्या थी कि भगवान ने उनको श्रीमद् भागवत प्रदान किया? शिव जी क्या चाहते थे? चौथी प्रकार की प्रलय, आत्यंतिक प्रलय चाहते थे, आतंक प्रलय करने की शक्ति चाहते थे, तो उन्होंने श्रीमद् भागवत प्राप्त की है ना। और उनको वो शक्ति प्राप्त हुई आत्यंतिक प्रलय करने की है। और ब्रह्मा जी की क्या समस्या थी कि उन्होंने भागवत प्राप्त की भगवान से? हाँ, रजोगुण से छूटने के लिए। रजोगुण में अहंकार अभिमान पैदा होता है, उसे छूटने के लिए ब्रह्मा जी ने जो है ना भागवत प्राप्त की। तो रजोगुण से छूटे ब्रह्मा जी, उन्होंने रजोगुण में भागवत का जो है ना अध्ययन किया और रजोगुण से छूटे। और विष्णु जी की क्या समस्या थी? हाँ, वो भक्तों को पांचों प्रकार की मुक्तियां देंगे और धर्म की रक्षा करेंगे, अवतार ग्रहण करेंगे, पूरी सृष्टि का पालन करेंगे, लेकिन जो पांचों प्रकार की मुक्तियां नहीं चाहते हैं उनका पालन कैसे करेंगे और अपना और लक्ष्मी जी का भी पालन कैसे करेंगे, है ना। तो उन्होंने श्रीमद् भागवत प्राप्त की और उन्होंने वो शक्ति प्राप्त की, है ना। ठीक है, धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जगत गुरु शिला प्रभुपाद की, श्री श्री राधा पार्षार्थी ललिता विशाखा गौर निताय सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय।
राम राम हरे हरे हरे
Hare 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 Hare
हरे।